नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुईं। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने व्यापारियों के लिए ऋण प्रक्रिया आसान करने के लिए फिनटेक पोर्टल का शुभारंभ किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने महाभियोग प्रक्रिया के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आज से भीम ज्योति उत्सव का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रशासन और नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं निर्णय लेने वाले पदों पर पहुंचेंगी तभी समाज से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी बदलाव संभव होगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बने और महिला सशक्तिकरण के इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दें।
इस देश को चलाने में, इस देश के प्रशासन में, इस देश की नीति बनाने में ही महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। अपने देश को किस प्रकार चलाना है, अपने राज्यों में क्या नीतियां होनी चाहिए, महिलाओं को हमारे परिवारों को छूती है, उस सब की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए जब महिलाएं आगे बढ़ करके आएंगी, विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, मंत्री बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, तब जाकर के उस सिस्टम में वो चेंज लाना संभव होगा।
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने व्यापारियों के लिए एक नया फिनटेक पोर्टल शुरू किया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सांसद प्रवीण खंडेलवाल और एक निजी कंपनी के अधिकारी जीएम जुलानी ने इसका शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए छोटे व्यापारियों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को आसानी से लोन मिल सकेगा। वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी शाखा से भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 35वीं बैठक हुई। बैठक में झुग्गी पुनर्वास, गिग वर्कर्स और गरीबों के कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान गिग वर्कर्स और श्रमिकों के लिए विश्राम केंद्र और जन सुविधा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया, जहां भोजन, विश्राम और अन्य जरूरी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। इन केंद्रों को अटल कैंटीन से जोड़ा जाएगा। साथ ही सावदा घेवरा में 717 झुग्गीवासियों को पक्के फ्लैट देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न इलाकों में डूसिप के सीईओ की वित्तीय स्वीकृति सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज दिल्ली गेट और बारापुरा नालों का निरीक्षण कर डीसिल्टिंग कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि दिल्ली गेट नाले पर 21,000 मीट्रिक टन से अधिक गाद हटाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि नाले की सफाई का 70% से अधिक काम पूरा हो चुका है। बारापुरा नाले पर 31,000 मीट्रिक टन से अधिक गाद निकालकर करीब 78% कार्य पूरा कर लिया गया है। दिल्ली में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक स्थलों को जोड़ने की पहल की गई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंध में बैठक कर अभियान का रोड मैप साझा किया। इस पहल के तहत 22 विभागों के माध्यम से 70 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धार्मिक संस्थानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से जले हुए नोटों के ढेर मिलने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चल रही है। पिछले वर्ष 14 मार्च को नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों का ढेर मिलने के बाद उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित आतंकी हथियार और जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। विशेष प्रकोष्ठ के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि पंजाब और दिल्ली से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी पाकिस्तान स्थित गुट के संपर्क में थे। श्री कुशवाहा ने जानकारी दी कि उन्हें जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली विध्वंसक गतिविधियों के निर्देश मिल रहे थे।
वैसे जो लोग अरेस्ट हुए हैं ये मोस्टली पंजाब के हैं, कुछ एक लोग जो हैं दिल्ली के भी हैं, पर जो दिल्ली वाले हैं वो लोग बेसिकली आर्म्स रिसीवर या आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। आर्म्स स्मगलिंग का पैसे का ही इस्तेमाल ये सीसीटीवी कैमरा लगाने में करते थे। अनमोल है फिरोजपुर का, अनमोल का बड़ा रोल रहा है सीसीटीवी कैमरा लगाने में। अनमोल और साहिल ने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को त्रिलोकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1700 क्वार्टर यानी लगभग 34 कार्टन अवैध शराब सहित तस्करी में इस्तेमाल होने वाले एक चार पहिया वाहन को बरामद किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने खाद्य मिलावट मामले में एक आरोपी को कापसहेड़ा बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रतिदिन उपयोग में आने वाले एक्सपायर्ड खाद्य और पेय पदार्थों सहित कॉस्मेटिक्स वस्तुओं को नकली लेबल लगाकर बाजार में दोबारा बेचता था। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नार्को टेररिज्म पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नार्को टेररिज्म वर्तमान समय की गंभीर सुरक्षा, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौती बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मादक पदार्थों का व्यापार संगठित अपराध, धन शोधन और आतंक वित्त पोषण को बढ़ावा देता है, जिससे देशों की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए बेहतर समन्वय, तकनीक के प्रभावी उपयोग और संतुलित रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें रोकथाम और सख्त कार्रवाई दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाए। सम्मेलन में रणनीतिक, कानून प्रवर्तन, कूटनीतिक और अकादमिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया। इस अवसर पर श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सिंधी सबसे प्राचीन और मधुर भाषाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार देवनागरी लिपि में सिंधी संविधान का संस्करण जारी किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस पवित्र दस्तावेज को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जब नागरिक संविधान को अपनी भाषा में पढ़ और समझ सकते हैं तो शासन और जनता के बीच की दूरी कम हो जाती है।
Today we are released the Constitution of India in our great Sindhi language. My special greetings to all the Sindhi speaking people on this Sindhi Bhasha Divas. That I have to appreciate our Megwalji for choosing this day to release the Sindhi version of the Constitution of India, and he has done it rightly on the day that has to be done.
आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि होम्योपैथी केवल एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि ये करुणा और प्रमाण पर आधारित एक विज्ञान है। आज विश्व होम्योपैथी दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में श्री जाधव ने कहा कि होम्योपैथी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और लोग इस उपचार को वरीयता दे रहे हैं।
होम्योपैथी ने निरंतर अपनी मजबूती बढ़ाई है और हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में एक सार्थक स्थान बनाया है। साथियों, आज भारत में होम्योपैथी का एक सशक्त और निरंतर विस्तार करता हुआ कार्यबल मौजूद है, जिसमें लगभग 3.45 लाख पंजीकृत चिकित्सक शामिल है। यह मात्र एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक क्षमता का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि होम्योपैथी एक ऐसी उपचार पद्धति है जिसने अपने सरल और समग्र दृष्टिकोण से लाखों लोगों तक पहुंच बनाई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि होम्योपैथी आज भी भरोसेमंद स्वास्थ्य विकल्प के रूप में कायम है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नजफगढ़ स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र में एक जिला टीबी केंद्र और चेस्ट क्लिनिक स्थापित करेगी। इस विशेष केंद्र में 10 बिस्तरों वाला एक इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट स्थापित होगा, जहां ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंट दोनों तरह के टीबी मरीजों को समुचित उपचार मिलेगा। नजफगढ़ स्थित ये केंद्र अपने स्थान और बेहतर सड़क और मेट्रो कनेक्टिविटी के चलते मरीजों की पहुंच को बेहद आसान बनाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी यात्रियों की प्रतिक्रिया और सुझाव जानने के लिए 13 अप्रैल से अगले महीने के 10 तारीख तक ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का आयोजन कर रहा है। ये सर्वेक्षण लंदन स्थित ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजिक सेंटर द्वारा कराया जा रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य मेट्रो सेवाओं को बेहतर बनाना है। इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए यात्री दिल्ली मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध फॉर्म को भर सकते हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का दौरा किया। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटकिथाला तथा एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल भी इस दौरान उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने सरायकाले खां स्टेशन से दुहाई डिपो तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा कर सुविधाओं का निरीक्षण किया। सरायकाले खां स्टेशन को मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया गया है, जहां मेट्रो, रेलवे और बस सेवाओं से आसान कनेक्टिविटी मिलती है। डॉ मिश्र ने दुहाई डिपो में अपरिमित इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया, जहां आधुनिक तकनीकों के जरिए ट्रेन संचालन और प्रशिक्षण को बेहतर बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार भारत रत्न डॉ भीमराव आम्बेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर आज से भीम ज्योति उत्सव का आयोजन कर रही है। 5 दिवसीय उत्सव कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित इंडिया गेट लॉन्स में आयोजित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
14 अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शनी और ज्योति उत्सव होगा। वहीं शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन के अंतर्गत आगंतुकों को बाबा साहेब के जीवन, विचारों और संघर्ष से जुड़े विभिन्न पहलुओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रस्तुतियां और जागरूकता गतिविधियां भी होंगी। कार्यक्रम में संविधान मेला खास आकर्षण होगा, जहां सरकार की योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन और कौशल विकास की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल वॉल के जरिए बाबा साहेब के जीवन और संविधान निर्माण की झलक भी दिखाई जाएगी। आयोजन के अंतर्गत एक विशेष गैलरी स्थापित की जाएगी, जिसमें 299 प्रमुख व्यक्तियों की सूची, उनके योगदान से संबंधित साहित्य और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही आगंतुकों को संविधान से जुड़े नियमों, अधिनियमों और प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की जाएगी। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह, परवेश साहिब सिंह और मनजिंदर सिंह सिरसा ने जल संसाधन दिवस पर दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है और हर बूंद की कीमत समझते हुए इसे बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि जल ही जीवन है और इसका संरक्षण देश की समृद्धि और तत्व विकास से जुड़ा हुआ है। राजधानी में आज दिन के समय हल्की धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुई। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने व्यापारियों के लिए ऋण प्रक्रिया आसान करने के लिए फिनटेक पोर्टल का शुभारंभ किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने महाभियोग प्रक्रिया के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आज से भीम ज्योति उत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।